ये आकाशवाणी है। अब आप जया भारती से समाचार सुनिए। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि ऑपरेशन ब्रह्मा के तहत भारतीय वायुसेना के 5 विमान म्यांमार के यांगून और नेपियोडो में पहुंच गए हैं। इन विमानों में आपदा प्रबंधन सामग्री, 60 पैरामेडिकल एम्बुलेंस और राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल के कर्मी सवार थे। इससे पहले भारतीय वायुसेना के स्टेशन हिंडन से C-130J विमान के जरिए भूकंप प्रभावित म्यांमार के लिए लगभग 15 टन राहत सामग्री भेजी गई थी। भारत म्यांमार की राजधानी में बचाव कर्मियों को भेजने वाला पहला देश है, जहां भूकंप के बाद हवाई अड्डा पूरी तरह से संचालन में नहीं है। NDRF की टीम आज सुबह मंडाले के लिए रवाना होगी। वहीं मांडले में राहत कार्यों के लिए पहुंचाने वाली पहली बचाव टीम होगी। सूत्रों के अनुसार हवाई अड्डे और नौसेना के जहाजों के जरिए भेजी गई कुल राहत सामग्री 137 टन है और आवश्यकता अनुसार और सहायता भेजी जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विनाशकारी भूकंप के बाद म्यांमार के वरिष्ठ जनरल मिंग आंग हुआंग से फोन पर बातचीत की। अपने सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने भूकंप से हुई मौतों पर गहरी संवेदना व्यक्त की है। प्रधानमंत्री आज नागपुर का दौरा करेंगे। गुड़ी पड़वा के पावन अवसर पर और मराठी नववर्ष की शुरुआत पर प्रधानमंत्री राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक डॉ. केशव हेडगेवार और गोलवलकर गुरुजी के स्मारकों पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पर्यावरण के प्रति सचेत और संवेदनशील जीवन शैली को अपनाने पर जोर देते हुए कहा कि इससे न केवल पर्यावरण का संरक्षण होगा बल्कि प्रकृति और अधिक जीवंत बनेगी। राष्ट्रपति ने कल नई दिल्ली में एक राष्ट्रीय सम्मेलन पर्यावरण 2025 को संबोधित करते हुए यह बात कही। 2 दिन के सम्मेलन का आयोजन राष्ट्रीय हरित अधिकरण कर रहा है। राष्ट्रपति ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण और प्रोत्साहन सक्रियता से सामूहिक प्रयासों पर निर्भर होगा। उन्होंने कहा कि आने वाली पीढ़ियों को स्वच्छ पर्यावरण उपलब्ध कराना हमारा नैतिक दायित्व है। गृह मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता अमित शाह 2 दिन के बिहार दौरे पर हैं। वे कल शाम पटना पहुंचे। आज श्री शाह पटना में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के नेताओं के साथ बैठक करेंगे। वे अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के तहत पटना में आयोजित राज्य स्तरीय सहकारी सम्मेलन में भी शामिल होंगे। श्री शाह 800 करोड़ रुपए से अधिक लागत के विभिन्न विकास कार्यक्रमों और परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले ने कहा कि उनकी पार्टी RPI अठावले आगामी बिहारी विधानसभा चुनाव में NDA गठबंधन का समर्थन करेगी। पटना में कल संवाददाताओं से बातचीत में श्री अठावले ने कहा कि वे NDA उम्मीदवारों के समर्थन में प्रचार में भी हिस्सा लेंगे। इससे पहले श्री अठावले ने पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की। उन्होंने राजनीतिक मुद्दों और बोधगया मंदिर प्रबंधन समिति BTMSC विवाद पर भी चर्चा की। श्री अठावले ने प्रदर्शनकारियों की मांग का समर्थन किया और बिहार के मुख्यमंत्री से मामले में हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया। कॉमेडियन कुणाल कामरा के खिलाफ महाराष्ट्र में उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर की गई कथित आपत्तिजनक टिप्पणी के लिए 3 और FIR दर्ज की गई है। ये मामले राज्य के तमाम हिस्सों में दर्ज किए गए हैं, जिन्हें मुंबई के खार पुलिस स्टेशन में मिला दिया गया है। शिकायतकर्ताओं का आरोप है कि कामरा की टिप्पणियों से राजनीतिक पार्टियों के बीच घृणा फैलाने की कोशिश की गई और इससे एकनाथ शिंदे की छवि को नुकसान पहुंचा है। इससे पहले मद्रास उच्च न्यायालय ने कामरा को गिरफ्तारी से अंतरिम सुरक्षा प्रदान की थी, जो 7 अप्रैल तक प्रभावी है। इसके बावजूद खार पुलिस ने तीसरी बार उन्हें सोमवार को बयान दर्ज कराने के लिए तलब किया है। वे पहले 2 समन पर उपस्थित नहीं हुए थे। इंडियन प्रीमियर लीग IPL 2020 क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में मुंबई इंडियंस को 36 रन से हरा दिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए साई सुदर्शन के 63 रन की शानदार पारी की मदद से गुजरात टाइटंस ने मुंबई इंडियंस को 197 रन का लक्ष्य दिया था। जवाब में मुंबई इंडियंस की टीम निर्धारित 20 ओवर में 6 विकेट पर 160 रन ही बना सकी। इंडियन सुपर लीग ISL फुटबॉल के प्लेऑफ के इतिहास में बेंगलुरु FC ने सबसे बड़ी जीत दर्ज की है। मुंबई सिटी FC को 5-0 के विशाल अंतर से हराकर बेंगलुरु सेमीफाइनल में पहुंच गया है। बेंगलुरु का अगला मुकाबला FC गोवा से होगा। वहीं बेंगलुरु से हार के बाद मुंबई सिटी FC टूर्नामेंट से बाहर हो गई।